ओम शांति। हम सबकी आदरणीय स्नेही दीदी हमारे सामने है। आप हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो दीदी की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता है, बड़े रमणीक ढंग से बाबा के ज्ञान की बातें हमारे सामने स्पष्ट करती हैं। और आज का विषय भी है सदा उमंग उत्साह बनाए रखने की विधि। ये कभी कभी चलते चलते उमंग उत्साह कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं लगता है, तो वो उमंग उत्साह हमारा कैसे बना रहे इस विषय को आप स्पष्ट करेंगे परम आदरणीय संतोष दीदी। हम उनका बहुत बहुत इस भक्ति में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर भाग्य विधाता बाबा करके हम सब ब्राह्मण बच्चों के भाग्य उदय करता। अगर सदैव भाग्य विधाता और मेरा भाग्य, ये दो बातें भी याद रहे तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने आकर के हम बच्चों को, जो हम अनेक पिंजरों में बंद थे, एक पिंजरा नहीं परंतु अनेक पिंजरा, देह का पिंजरा, देह के संबंधों का पिंजरा, रीत रसम का पिंजरा, जाति का न्याति का पिंजरा, देश भाषा, कितने पिंजरे, पिंजरे में पिंजरे, पिंजरे में पिंजरे, अपने पुराने संस्कारों के पिंजरे, विचारों के पिंजरे पुराने, इन सभी को एक सेकंड में क्या कर दिया, इन सब पिंजरों से हमारे को निकाल करके कौन सा पंछी बना दिया, उड़ता पंछी बना दिया। बाबा कहते मीठे बच्चे, वैसे तो पंछियों को दो पंख होते हैं, परंतु जो बाबा के पंछी है उनको चार पंख होते हैं, तो उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए बताइए। चार पंख वाले देखे पंछी? हाँ देखे आप लोगों ने, देखे नहीं देखे? आप कौन है सब? चार पंख वाले बोलो ना, हमें चार पंख वाले पंछी, कौन से चार पंख मिले बताओ? ज्ञान और योग के पंख दो मिले और उमंग और उत्साह के दो पंख मिले, चार पंखों। आप खुद ही विचार करो, जिनके चार पंख हो गए वो उन पंछियों की स्पीड कितनी हो। तो बाबा ने हम बच्चों को पिंजरे के पंछी से स्वतंत्र पंछी बना दिया। कहा जाता है परतंत्रता में सुख नहीं, तो पहले परतंत्रता थी इसीलिए सुख नहीं था, परंतु अब जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, सर्व बंधन टूट गए, तो इसीलिए हमारा गायन क्या किया जाता है, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो, वो कौन से गोप गोपी है तो बोलो ना हमारे से पूछो। अभी तक आपको लगता ही नहीं है मन को कि हम ही है वो, हाँ? तो जो अति इंद्रिय सुख है उसकी अनुभूति केवल हम और हम ही कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जब भी इस ज्ञान मार्ग में चलना चालू करते, धूप से छांव में आते हैं, क्योंकि माया है धूप, बहुत कड़ी धूप है, थोड़ी अग्नि है, उससे निकल के हम जब बाबा की छत्र छाया में आते हैं तो बड़े उमंग उत्साह से दौड़ना उड़ना चालू कर दे, स्पीड बहुत फुल होती है, जोश होता है उस समय, कंट्रास्ट बुद्धि में होता है ना, तो उस समय बड़ा जोश होता है। जोश से क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बाबा भी हमें देख देख करके खुश होता है कि वाह मेरे पंछी कहां से कहां पहुंच गए। तो बाबा ने जब हम बच्चों को इतना आगे रखा, उड़ना सिखाया, हम भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु उड़ते उड़ते कभी कभी कोई कोई पंछी, सबने ऐसा कर दे, इधर उधर थोड़ा देखना चालू कर देते, सामने उड़ने के बजाय इधर देखा उधर देखा, ये क्या कर रहा वो क्या कर रहा, इधर क्या हो रहा उधर क्या हो रहा। आप चलने के समय भी अगर इधर उधर देखेंगे तो क्या होता है, स्पीड कम होती है बढ़ती है। तो चलते चलते थोड़ी स्पीड में फर्क हो जाता है, और फिर अपना अनुभव कोई कोई ब्राह्मण सुनाते हैं। पहले जब हम आए ना तभी हमको बहुत उमंग था, पहले जब ही आए ना हमको तभी बहुत खुशी थी, अभी थोड़ी कम हो गई। ऐसा है ऐसा जो कहते हैं वो हाथ ऊपर करो, लज्जा नहीं करो, ऐसा है वास्तव में, हाथ करो या नहीं करो, वास्तव में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा, जिसके सामने बेहद की घड़ी हमेशा सामने रहती है और लक्ष्य सामने रहता है कि अभी इस बेहद की घड़ी में थोड़ा सा समय बाकी है और हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। उनकी स्पीड कभी भी कम नहीं हो सकती, उनकी स्पीड बढ़ती। साकार बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हारे को अभी नई दुनिया के नजारे दिखाई देने चाहिए, अभी तुम एकदम षडपंद पर आके पहुंचे हो। षडपंद का मतलब हम आवाज देवे और आप उसका रिस्पांस करो, इतना नजदीक। तो नई दुनिया स्वर्ग हमारे इतने नजदीक है, हम एक दो का आवाज सुन सकते हैं। तो जब इतने नजदीक आते हैं, जैसा समझो हम मुसाफरी करके अपने निश्चित स्थान के ऊपर जाते, अभी आप हैदराबाद से आए तो हैदराबाद को जब ही जाएंगे तो जितना जितना हैदराबाद नजदीक आता जाएगा वहां की निशानियां आपको दिखाई देने लग पड़ेंगी, फैक्ट्रियां दिखाई पड़ेगी, घर दिखाई पड़ेंगे और अलग अलग दृश्य दिखाई पड़ेंगे। अभी आपको लगेगा अभी आया हैदराबाद, आया क्या है। तो जितना नजदीक जाएंगे उतना स्पष्ट दिखाई पड़ता है, दूर होंगे तो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, पर नजदीक जाएंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और हम क्या करते हैं, फटाफट अपना सामान बैग बैग बांधना चालू कर, अलर्ट हो जाते हैं, कि अभी हमारा स्टेशन आया कि आया, अभी हमको उतरना। तो वैसा ही जबकि हम यात्रा के ऊपर है, हम अपने घर में और अपनी नई राजधानी में जा रहे हैं। कितने वर्षों से यात्रा कर रहे हैं, तो जब यात्रा कर रहे हैं तो अभी उसके नजारे स्पष्ट दिखाई देने चाहिए या धुंधले दिखाई देने चाहिए, आपको क्या लगता? अगर मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम चल तो जरूर रहे हैं, उड़ तो जरूर रहे हैं, परंतु आगे नहीं बढ़ रहे। जैसा कोहलू का बैल होता है ना, उधर का उधर घूमता रहता है, वो समझता है मैं बहुत चल के आ गया हूं, फिर उसकी आंखें खोलो तो फिर कहां होता है, जिधर का उधर ही होता है। तो उसी प्रकार अगर आंखों के ऊपर अलबेलेपन की पट्टी बांध करके चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा हम चल रहे हैं परंतु आगे नहीं बढ़ रहे। जो हमें वहां की भासना आनी चाहिए, जैसा साकार बाबा थे, बाबा को एकदम भविष्य क्लियर दिखाई पड़ता था। बाबा ऐसा वर्णन करते थे हम सभी के आगे भी वो दृश्य एकदम क्लियर हो जाता, बाबा इतना खुश होता था। बाबा बोलता था अभी अभी मैं शरीर छोड़ूंगा और जाके मिचनू बनूंगा, इतना क्लियर बाबा को दिखाई पड़ता था। तो दिखाई क्यों इतना क्लियर पड़ता था, क्योंकि उसके नजदीक जा रहा। तो उसी प्रकार अगर सचमुच हम ठीक रीति से चल रहे हैं तो हमारे को भी नई दुनिया और अपना घर नजदीक दिखाई पड़ना चाहिए, वहां के दृश्य दिखाई पड़ने चाहिए। जब तक आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक ये पुरानी दुनिया भूल नहीं सकती। अगर वो दिखाई पड़ेगा, कोई एक सादा घर बनाता है किसी का, बाप एक मकान लेता है, एक फ्लैट लेता है, तो भी सारा समय बुद्धि में प्लान चलता रहता है, अभी हमारा नया घर बनने वाला है, उसमें ऐसा फर्नीचर डालेंगे, उसमें ये करेंगे, उसमें ये होगा, उसमें वो डालेंगे, सारा समय चलता है, नहीं चलता। ये तो हमारा बाप तो हमारे लिए दुनिया ही नहीं बना रहा। तो हमारी बुद्धि में सारा समय वो प्लान क्यों नहीं चलते, हमारे सामने वो दृश्य क्यों नहीं क्लियर होता है, हमें क्यों नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारी नई दुनिया आई की आई। वहां के बाग बगीचे बाबा कितना अच्छा वर्णन करता है, बच्चे एक एक आबू जितना तो तुम्हारा महल होगा वहां, तो हमको वो महल क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा। वहां कितने बड़े बड़े बगीचे हो गए, हमको क्यों नहीं बगीचे दिखाई पड़ रहे। ब्रिजेंद्र आजादी वर्णन करती थी, बोलती थी वहां एक एक मीटर का केला होगा, तो हम लोग सभी हंसते थे एक मीटर का केला होगा तो दादी कौन खाएगा, कैसा क्या करेंगे, घर में रहने वाले तो बहुत कमती लोग होते हैं, दो दो दुने चार, मतलब वहां के फल फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि सत्व प्रधानी प्रकृति होती है। तो उमंग उत्साह कमती इसीलिए होता है क्योंकि हम बड़े निश्चिंत हो गए हैं कि हम बाबा के बन गए, हम बाबा के और बाबा हमारा। हा? फिर जब ही बाबा है ही हमारा तो किसको देगा भला वर्षा, उसके दूसरे है कौन जिसको वर्षा देगा, दूसरे तो कोई उसको पहचानते नहीं, देखे तो हमारे कोई देने वाला है, हमारे बगैर तो और किसी को देगा नहीं, फिर चिंता क्या की करने की। हाँ, बाबा ने कहा है चिंता नहीं करो, पर चितवन तो होना चाहिए, चिंतन तो होना चाहिए। चिंता छोड़ने को कहा है, चिंतन छोड़ने को नहीं कहा। तो जितना जितना हम चिंतन करते हैं उतना उतना हमारे को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना उतना हमारा उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। जितना जितना हम उन दृश्यों को आंखों के सामने लाते हैं उतना उतना ये दुनिया स्वतः ही भूलती जाती। हम अपने घर के नजदीक जा रहे हैं उसकी भी निशानियां, हम जब उड़ करके अपने घर के नजदीक जा रहे हैं, हमारा घर शांति धाम स्वीट साइलेंस होम है। शांति धाम से जब आत्माएं नीचे आती है तो कौन सी स्थिति में होती है? शांति की स्थिति में होती है। अभी हम वापस ऊपर जा रहे हैं तो हमारी स्थिति अभी कैसी होनी चाहिए? तो जो जितना घर के नजदीक, जिनको जितने घर की स्मृति है उनको आवाज अच्छा नहीं लगे, आवाज करना भी नहीं अच्छा लगेगा, आवाज सुनना भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको वो शांति खींचती रहे। अगर अभी तक हमको आवाज की दुनिया अच्छी लग रही है, पुरानी दुनिया के आवाज सुनाई पड़ रहे हैं, पुरानी दुनिया के आवाजों में दृश्यों में अगर हमको अभी तक इंटरेस्ट है, इसका मतलब हम घर से अभी तक बहुत दूर, हमारे को वो शांति अपनी तरफ क्यों नहीं खींचती? तो हरेक कोई हम अपने पुरुषार्थ को देखे कि पहले जो हमारी अवस्था थी उसकी भेंट में अभी मेरी चढ़ती कला है, या हम जहां हैं वहां ही चल रहे हैं? बाबा को याद करते हैं जो केजी का लेसन देते हैं हम कि मैं आत्मा और शिव बाबा का बच्चा हूं, आज भी अगर वो ही लेकर के हम बैठे हुए हैं, वो ही पाठ हमने पक्का नहीं किया हुआ है, तो आगे कैसे बढ़ सके? क्या जिस समय बाबा हमारे दिल से निकलता है तो वो बाबा की शक्तियां, वो बाबा के गुण, वो बाबा के द्वारा जो प्राप्तियां हैं वो इमर्ज रूप में होती, हमारे को वो अनुभव होता है कि आज भी हमको योग लगाना पड़ता है? हम योगी जीवन वाले हैं या योग लगाने वाले योगी? अगर इतने वर्षों के बाद भी जिसको जितना भी समय हो गया, अभी तक हम योग लगाने वाले ही योगी हैं, तो योगी जीवन की अनुभूति कभी होगी? योगी जीवन का अर्थ क्या है? योगी जीवन का मतलब है सदैव जिसका बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा हुआ, बाबा घड़ी घड़ी बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी याद करो। घड़ी घड़ी याद करो का मतलब क्या हुआ? टूटता है जुटता है, टूटता है जुटता है, इसलिए घड़ी घड़ी हो गया ना। अगर हमारा बुद्धि का योग बाबा के साथ निरंतर लगा हुआ है तो घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत ही नहीं है, तेरी याद है ही है, तेरे बिगर कोई नहीं है। जिसके साथ बहुत प्रीति होती है ना, उसकी याद अंदर में छप जाती है। तो क्या बाबा की याद हमारे अंदर छप गई है, या अभी तक पंछियों को कहां पतला धागा ऐसा बांधा हुआ है जो अपनी तरफ खींचता है, उड़ने नहीं देता, ऊपर उठते फिर नीचे, ऊपर उठते फिर नीचे? तो स्पीड कैसे आएगी ये बताइए? अभी जिसको उड़ना ही नहीं आता है उसको जब उड़ना आता है वो जरा सा भी उड़ेगा तो उसको खुशी होगी, अरे मेरे को उड़ना आ गया। पर जिसको उड़ना आता है वो अगर ऊपर नहीं जाता होगा ज्यादा तो उसको खुशी थोड़ी होगी, उसकी खुशी तो कम होगी ना जरूर। तो बाबा ने हम बच्चों को इतनी शक्ति दिया है हमारे परों के अंदर, पंखों के अंदर, माया ने हमारे पंख काट दिए पर बाबा ने हमारे को फिर से पंख दे करके ऐसा उड़ना सिखाया, ऐसी शक्ति भरी उन पंखों के अंदर जो एक सेकंड में हम अपने घर में जा सकते, अपने वतन में जा सकते, अपनी नई राजधानी के दृश्य देख सकते, परंतु नहीं उड़ सकते। इसका कारण क्या? इसका कारण जो मेन कारण है वो यही है कि जो अभ्यास करना चाहिए आत्माभिमानी स्थिति का वो नहीं किया है तो ये हालत हो। साकार बाबा ने शुरू शुरू में इतनी मेहनत क्यों किया बताओ? कापियां की कापियां लिख दिया, दीवारें की दीवारें भर दिया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, घर के जितने मेंबर थे उनके नाम से कापियां की कापियां लिख के रख दी, पक्का किया मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा किसी बंधन में नहीं। परंतु हम क्या करते, आत्मा समझते समझते फिर कभी देह के भान, कभी आत्माभिमानी स्थिति में, कभी देह के भान। तो ये जो देह है, देह किसकी बनी हुई है? किसकी है? मिट्टी की है ना। क्या कहते हैं हम, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में कौन सी शक्ति है? क्या शक्ति है? शक्ति है ना मिट्टी में, कौन सी शक्ति है? आप किसी चीज को ऊपर फेंको तो कहाँ जाता है, कौन खींचता है उसको? मिट्टी खींच। तो उसी प्रकार अगर हमको इस मिट्टी का भान है अभी तक, ऊपर उड़ते वापस नीचे खींच, कहाँ जा रहे, आ जा इधर, इसमें थकावट होती है। आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास न होने के कारण, अपने ऊपर अटेंशन न होने के कारण ये मिट्टी घड़ी घड़ी अपनी तरफ खींचती है। फिर ये एक नहीं खींचेगी, इसके संबंध में जितने भी मिट्टी के पुतले वो खींचते रहे, कभी व्यक्ति खींचेगी, कभी पदार्थ खींचेगा, कभी वस्तु खींचेगी, कोई ना कोई अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब आकर्षित होते हैं तो उड़ने के बजाय नीचे आते, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर गए नीचे आए तो उमंग क्या हो जाता है, नेचुरली कम होगा। तो हमारा उमंग सदैव बना रहे। कोई कोई हमारे भाई बहन बोलते भट्टी में आए ना, हमारे को बहुत उमंग उत्साह आया, अभी देखना हम क्या करके बताएंगे। फिर घर में गए वही वातावरण हुआ, ओम शांति, फिर क्या हुआ भाई? हाँ करते तो परंतु क्या करेंगे, तो वातावरण ने खींच लिया। टेम्पररी इसको कहते हैं प्रोग्राम से प्रोग्रेस। अगर प्रोग्राम से हमारी प्रोग्रेस होती है तो वो परमानेंट नहीं हो सकती है, ये ध्यान में रखो। हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो उन्नति है, वो हमारी निरंतर उन्नति होनी चाहिए, प्रोग्राम से प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है चेंज होता है, सब कुछ होता है, मदद मिलती है, वो अलग है, परंतु ऐसी प्रोग्रेस नहीं जो अभी प्रोग्रेस हुई और फिर वातावरण चेंज हुआ तो ये होगा, नहीं, फिर हमारी स्थिति से वहां का वातावरण चेंज हो जाना चाहिए, वहां के वातावरण से हमारी स्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रोग्रेस करनी चाहिए हमें प्रोग्राम के द्वारा। बाबा जो बोलते हैं, बच्चे तुम्हें सारे विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं, तुम्हें सारे विश्व को पवित्रता के वाइब्रेशन देने हैं, तो कैसे देंगे हम? अगर हम ही वातावरण के अधीन होंगे तो कैसे क्या दें? इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारे को जो जो बाबा के द्वारा प्राप्तियां होती हैं, जो जो बाबा के द्वारा तुम्हारे को अब तक मिला हुआ है उसको घड़ी घड़ी अपने अंदर रिवाइज करो। अगर वो याद नहीं, इमर्ज रूप में नहीं होता है ना, इमर्ज रूप में न होने के कारण फिर क्या याद आता है, बाबा के बने ना हमारे को ना बहुत सहन करना पड़ा, इतना सहन किया, आपको क्या मालूम, आप तो छोड़ के बैठ गए, हमारे को कितना सहन करना पड़ता है, घर में बहुत तकलीफ होती है। तो क्या दिखाई पड़ती है, तकलीफ दिखाई पड़ती, समस्याएं दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि बाबा ने हमने जो छोड़ा उसकी भेंट में बाबा ने मेरे को कितना गुना प्यार दिया, कितना गुना बाबा ने मुझे शक्ति दिया, कितनी मुझे युक्तियां बताई वो मैं भूल गई, और मैंने जो जरा सा सहन कर लिया वो मुझे याद रह। तो बताओ क्या होगा, तो डिफिकल्ट लगता है, खुशी गायब होती है, क्योंकि त्याग याद है, भाग्य याद नहीं है। जो भाग्य को याद करता है वो सदैव खुश रहता है, सदैव उमंग में रहता है। वारे मेरा भाग्य, बाबा कहते हैं गीत गाओ, वारे मेरा भाग्य वाह, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी का है, जो भगवान भाग्य विधाता उनको अपना बनावे, उनके भाग्य को उदय कर डाले। तो बाबा के साथ साथ खुद के भाग्य के गीत गाते रहो कि क्या थे और क्या बन गए। अरे को तो फायदा हुआ है ना बाबा का बनने से, या यहाँ जो बैठे उसमें से किसी को नुकसान हुआ बाबा का बन के? नुकसान होता था तो बैठते ही नहीं थे, दिखाई नहीं पड़ते थे आप। आज देखो कोई डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर से फायदा होता है तभी तो घड़ी घड़ी धक्के खाते वहां, नहीं फायदा होगा तो जाएगा दूसरी और दवाई लेने के लिए। तो हम जो बाबा के पास बैठे हैं उसका आधार क्या है, प्राप्ति का आधार है ना। तो वो जो बाबा हमें प्राप्तियां कराता है उन प्राप्तियों को घड़ी घड़ी रिवाइज करने से आपको खुशी मिलेगी, फिर त्याग त्याग नहीं लगेगा। ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं देखा कि मैंने क्या छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने ये देखा मैंने क्या पाया। बाबा आज भी बोल रहे कितना बड़ा टेम्पटेशन है तुमको, एक जन्म पवित्र रहते हो 21 जन्मों की गारंटी है, एक बार ही स्वमान में रहते हो सारा कल्प तुम्हारा सम्मान होता है, क्या चाहिए क्या फिर बताओ तुझे। अभी हम अपने स्वमान की सीट पर रहते हैं, अरे ये पॉलिटिक्स को तो देखो, सीट पकड़ने के लिए क्या नहीं कर रहे वो लोग, उनको खींच खींच के नीचे फेंक रहे लोग तो भी बैठ रहे उसके ऊपर, और सीट भी उनकी कौन सी है, कांटों की सीट है तो भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और बाबा हमको स्वमान की सीट के ऊपर बिठा रहे फिर भी बच्चे भाग भाग के जा रहे, कमाल है। गरम लग रही क्या सम्मान की सीट? तो बाबा जो हम बच्चों को सम्मान की सीट देता है, आप 365 दिन के 365 सम्मान है उसको मालूम है, ये बच्चे ऐसे हैं, एक ही अगर बताऊंगा तो बोर हो जाएगी एक ही स्थिति में रह के, इसीलिए रोज नया नया, चलो कभी विश्व कल्याणकारी बन के चलो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन के चलो, कभी वरदाता बन के चलो, कभी महादानी बन, जो चाहिए वो बनो ना तुम, परंतु बैठो तो सही, इतनी सीट मिलती है। तो जितना यहां पर हम अपनी स्वमान की सीट पर बैठते हैं उतना सम्मान मिलता। भक्ति सतयुग में नई दुनिया में प्रजा हमारा सम्मान करती है, राजाओं का क्या ठाट होता है, वहाँ 36 प्रकार के तो भोजन बनते हैं उनके, कितने बड़े बड़े महल होते हैं, श्री कृष्ण जैसे मिचनू को 100 तो दासियां होती है, आप क्या समझते हैं, क्या आनंद लगा पड़ा है वहाँ। दूध घी की तो नदियां बहती हैं। ये कितना बाबा ने हमारा मान बढ़ाया देखो, और प्रजा तो जी हजूर करने को तैयार होती। बाबा कहते हैं वहां देखो तुम्हारा कितना सम्मान है राजाओं का, और फिर उसके बाद द्वापर से लेके भगत तुम्हारा कितना सम्मान कर, तुम्हारे हर कर्मों की पूजा हो रही है, भक्तों का सम्मान तो देखो, ऐसा कोई है दुनिया में? देवताएं हैं जिनके हर कर्म, अभी देवताओं को भोग लग रहा है उसकी पूजा अलग हो रही है, देवताएं विश्राम कर रहे उसकी पूजा अलग हो रही है, देवताएं श्रृंगार कर रहे उसकी पूजा अलग हो रही है। आप याद तो करो एक एक बात को, देखो उमंग बढ़ता है या नहीं बढ़ता है आपका? अरे हमारा इतना सम्मान, ये हमारे हर कर्म की पूजा कर रहे हैं बाबा ने, देखो कितना सम्मान है। वो तो छोड़ो, परंतु स्वयं भगवान हमारा कितना सम्मान रखते, बाबा की एक एक मुरली देखो। मैं तुम बच्चों को पलकों पर बिठा करके लेके जाता, बाबा ने उस दिन बोला ना, अरे भक्ति मार्ग में बताते हैं श्री कृष्ण का बाप उसको टोकरी में रख करके और नदी पार करके गया, ये तो यहाँ की यादगार है। मैं आकर के तुम बच्चों को नैनों की पलकों में बिठा के भवसागर पार करा दू, तुम मेरे नूरे रतन हो, तुम मेरे दिल तक तो नशीन हो, क्या चाहिए सम्मान बताओ ना, और क्या चाहिए? भगवान के दिल के ऊपर बैठने का अधिकार मिलता है, भगवान के नयनों में बैठने का अधिकार मिलता है, उसके सिर के ऊपर बैठने का अधिकार मिलता है। वो कहता है मैं तुम्हारा गुलाम बन के आता हूँ, और चाहिए क्या तुमको? और फिर बोलो हमारा उमंग कमती हो गया, कैसा क्या कमती हो गया तुम्हारा उमंग और उत्साह? इतना मिलने के बाद भी ये उमंग उत्साह कमती हुआ तो आओ भाग्य, फिर क्या कहेंगे? तो बाबा ने हमें जो कुछ दिया है उस बाबा की सर्व प्राप्तियों को आप सदैव रिवाइज करो, बाबा के ज्ञान को रिवाइज करो। जितना जितना ज्ञान को रिवाइज करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतना उतना क्या होगा, आपको रतन मिलेंगे, आपके आपके पास खजाना जमा होगा, खजाना जमा होगा तो नशा चढ़ेगा। उसके लिए एक बात पक्की कर लो कि हमें सदैव सी फादर और फॉलो फादर करना, इधर उधर नहीं देखो। अरे ये इतने वर्षों से चलता है, अभी इसकी हालत तो ऐसी है, अभी हम तो अभी आए हैं तो फिर क्या है, हम रेस कर रहे हैं। बाबा कहता है ये ह्यूमन रेस है, तो रेस में हमेशा क्या होता है, सामने देखते हैं, जो रेस में दौड़ते हैं उनका ध्यान लक्ष्य तक होता है, मुझे वहां पहुंचना है। अगर इधर देखा उधर देखा ठोकर लगेगी, नीचे गिरेगा। तो हम जो रेस में दौड़ते दौड़ते अगर पर दर्शन पर चिंतन की धूल तीसरे नेत्र में पड़ती है, उमंग उत्साह क्या सब कुछ खलास हो जाता, ज्ञान ध्यान भी खलास हो जाता। वैसे भी नेत्रों की बड़ी संभाल की जाती है, आंख में देखो जरा सा इतना सा भी कुछ कणा भी चला जावे ना, आंख मलमल के लाल हो जाती है, सहन नहीं कर सकती है। तो तीसरे नेत्र में अगर पर दर्शन और पर चिंतन की धूल पड़ी तो गए काम से, आंखें मलते ही रह जाते फिर। इसीलिए मुझे किसी को भी देखना नहीं, मुझे देखना है तो बाबा को देखना है, मुझे फॉलो करना है तो बाबा को फॉलो करना है, मुझे पहुंचना है तो मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है। खुद के ऊपर निश्चय रखो, बाबा के ऊपर जितना है उतना। हम बाबा के विजयी रतन, बाबा ने हम बच्चों को आते ही पहला पहला टाइटल क्या दिया कि विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार, बाबा ने हमको अधिकार दे दिया विजय का। परंतु बाबा कहते बच्चे खुद ही क्या करते, पता नहीं हम चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, मंजिल तो बड़ी ऊंची है,
तो ये पता नहीं करते हमारा पत्ता कट जाता है। हमें पता नहीं तो किसको पता है। तो इसीलिए बाबा ने जो हम बच्चों को इतना नशा चढ़ाया हुआ है कि तुम मेरे कल्प कल्पांतर के विजय रतन हो, विजय माला के मणके हो, वो नशा रखो। नशे में मनुष्य क्या नहीं करता है, गटर में गिरा होगा समझेगा मैं राजगद्दी पर बैठा हूं। देखो सही, शराब पिए हुए होते गटर में पड़े होते हैं, ऐसा बात करे जैसा प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि नशा चढ़ा हुआ होता है ना, बात ऐसा करेगा। और यहाँ तो हमारे को सच्चा सब नशों में बाबा कहते हैं है नुकसान सिवाय नारायणी नशे के। हमको जब नारायणी नशा चढ़ता है तो हम समझते हैं क्या है क्या नहीं, फिर कभी कठिन नहीं लगा। नशे में मनुष्य बहुत काम करते हैं, ये बॉम्ब्स वगैरह जो गिराते हैं ना इनको भी नशे चढ़ाते हैं, तो इनको पता ही नहीं पड़ता है बॉम्ब गिरा देते। और यहाँ देखो बाबा हम बच्चों को इतना नशा चढ़ाता है और नशे में कहता है अभी उड़ो तुम, क्या कर रहे हो बैठे क्यों। तो जितना जितना ये ईश्वरीय नशा चढ़ता है हमारे को, ईश्वरीय संतान का नशा, कि हम डायरेक्ट बाबा ने कहा ना देखो, कहते परमात्मा ने हमको पैदा किया ऐसा ही बोलते हैं, परंतु यहाँ प्रैक्टिकल में मैं तुमको पैदा करता हूँ, ब्रह्मा के मुख से पैदा करता हूँ। बाबा के एक एक महावाक्य देखो, अगर मुरली के साथ प्यार है, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान है, कभी भी आपका उमंग उत्साह कम नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा के हर मुरली में इतनी युक्तियां बाबा ने दिया हुआ है जो सदैव आप आराम से उड़ सकते हैं, परंतु इतनी लगन चाहिए हमको। उस लगन से अगर हम बाबा को, हमारे लिए बहुत लगन है हमारे बच्चे आगे बढ़े, पर हमको लगन है वो। अगर बाबा का साथ और बाबा का हाथ साथ में लेके चलते आपका उमंग कभी कम नहीं होगा, आपका उमंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाबा का हाथ मेरे हाथ में है। बाबा का हाथ माना श्रीमत। बच्चे जब मेले में जाते हैं छोटे बच्चों का हाथ पकड़ना पड़ता है ना, नहीं तो इधर उधर भटक जाएंगे, तो बाबा भी हमारे को हाथ दे के चल रहा है, श्रीमत रूपी हाथ छोड़ो नहीं कभी। बाबा हमेशा कहता था धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, मरना भी पड़े ना तो भी हमारा जो धर्म है जो श्रीमत है वो हमको नहीं छोड़नी है। कौन क्या करता है करने दो, कौन छोड़ता है उसको, मुझे नहीं छोड़ना। तो जो श्रीमत रूपी हाथ पक्का पकड़ के चलता है वो सदैव आगे बढ़ता, वो सदैव उमंग उत्साह में रहता, माया कुछ नहीं कर सकती उसको। और ये जो इतनी परिस्थितियां आती है, आप कहेंगे परिस्थितियां हमको नहीं, परिस्थितियों की ताकत नहीं हमको नीचे लाने की। बाबा ने अभी दो चार दिन पहले ही बताया, कोई भी परिस्थिति आवे, कोई बात आवे ना, जो बात आती है ना, आप ऊपर चले जाओ। हमको स्कूल में पढ़ाते थे एक जीरो लगाओ, लगाते थे। अभी ये जो जीरो है ना, ये जो तुमने बड़ा जीरो लगाया ना, अभी इस जीरो को छोटा करो। अभी जिनको अक्कल नहीं होता था वो पहुंच के छोटा जीरो लगाते, और जो अक्कल वाले हो क्या करते थे, उससे बड़ा बाजू में लगा देते थे, वो वापिस छोटा हो जाता। परीक्षा देखते थे हमारी बुद्धि की, इनको कहां तक इनकी बुद्धि काम करती। तो उसी प्रकार बाबा भी वही खेल करता है कि कोई भी परिस्थिति आई ना तुम्हारे ऊपर, तुम उस परिस्थिति से बड़े हो जाओ। जब तुम परिस्थिति से बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिस्थिति छोटी हो जाए, परिस्थिति खलास हो जाएंगे। वो एक गीत भी है ना हमारा, क्या है वो गीत, हाँ नहीं, हाँ ये मत कहो खुदा से हमारी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो हमारा खुदा बड़ा, खुदा बड़ा है तो हम खुदा के बच्चे भी बड़े, हम छोटे हैं क्या, बड़े बाप के बच्चे तो बड़े ही होते हैं ना। तो गीत तो गाते हैं परंतु हम अपने को बड़ा समझ के चले। तो ये मुश्किलें क्या है, मुश्किलें कुछ भी नहीं, ये आएगी, बाबा ने पहले से बता दिया, घबराने की जरूरत नहीं, ये सब साइट सीन है, साइड सीन कभी भी ठहर, साइड सीन उसको ही कहा जाता है जो थोड़े समय के लिए होती, साइड से आती है साइड से चली जाती है, पर तुम उसको टकराने को जाते हो, काय को जाते हो, तुम सीधा चलो ना, वो तो बिचारी साइड से जा रही, तुम उसके अंदर क्यों घुस रहे। गलतियां हम करते हैं और फिर बाबा को बोलेंगे बाबा देखो ना माया ऐसा करती है, माया क्यों नहीं करेगी, माया को अच्छा लगता है मेरे ग्राहक जा रहे हैं। माया को ब्राह्मण बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके पक्के पुराने ग्राहक है ना, तो वो जब भी छोड़ते हैं ना उसका हाथ तो उसका बिचारी का हृदय विदीर्ण होता है, फिर वो अनेक रूप लेती रहती है, कुछ ना कुछ लेती रहती, तो उसके लिए भी परखने की शक्ति चाहिए कि ये माया है या क्या है। और बाबा क्या बोलता है, ये माया बेटी है मेरी, मैं बोला बाबा हमारी दुश्मन है और तेरी बेटी है, हाँ उसको बेटी बोलते, बेटी क्यों बोलता है, जब ही हम बाबा को भूलते हैं तभी माया थप्पड़ लगाने को आती, ऐसा नहीं मारती माया किसी, बाबा को भूले कभी थप्पड़ लगाएगी, कभी धक्का देगी पीछे से, कभी कान पकड़ेगी, कभी नाक पकड़ेगी, तो बाबा का काम करती है ना कि बाबा को क्यों भूले, करो बाबा को याद। तो अगर हम सचमुच अपने ऊपर अटेंशन रख के चलते हैं और सदैव बाबा के श्रीमत के ऊपर चलते हैं, आज्ञाकारी बन करके चलते हैं, तो हमारा उमंग कभी कमती नहीं होती, कितनी भी बातें आने दो, कितनी भी मुसीबतें आने दो, वो हमको आगे बढ़ाती है। परीक्षा किसके लिए आती है, आगे बढ़ाए आगे के क्लास में बिठाने को, पीछे के क्लास में बिठा, तो फिर ये परीक्षाएं आएगी। अगर परीक्षा नहीं आवे तो आपको हमको कैसा मालूम पड़े हम कितना पढ़े हैं अभी तक, परीक्षा आएगी तभी तो मालूम पड़ेगा हम ठीक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो ये माया, बाबा ने काम दिया है माया को, माया तू परीक्षा ले, मैं पढ़ाऊंगा, देखो कैसा उस्ताद है वो, कहता है मैं पढ़ाऊंगा, माया तू इन बच्चों की परीक्षा ले, खुद परीक्षा नहीं लेता है, माया तू परीक्षा ले, बच्चों को कहता है तुम खुद को खुद मार्क्स दो, मार्क्स भी नहीं देता है, हमारे पेपर वो नहीं चेक करता है, हमको बोलता है तुम ही चेक करो, और तुम मार्क्स दो जितने भी देने हो वे दो तुम अपने को मार्क्स, खुद फ्री का फ्री रहता है, फिर सब कुछ करके फिर अपना आप छुपा देता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, खुद न्यारा और प्यारा रहता, तभी तो सबको प्यारा लगता है ना, न्यारा रहता। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं, जो बाबा ने हम बच्चों को दिनचर्या बना के दी, देखो बाबा अमृत वेले के लिए कितना बोलता कि अमृत वेले मैं तुम बच्चों को उस समय मदद भी करता हूं, एक्स्ट्रा मदद करता हूं, तुम्हारी जो आशा हो मैं पूरी करता हूं, तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता हूं, पर हम फिर भी उसका अगर लाभ नहीं लेते तो क्या करेंगे तो बताओ। अगर हम थोड़ा भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से अगर हम ईश्वरीय अवज्ञाएं करते हैं, उसकी आज्ञा पर नहीं चलते हैं, तो हमारा उमंग कमती हो जाती, तो हमारी शक्ति कमती हो जाती है, शक्ति कमती हो जाएगी तो चलने का उमंग कमती हो जाएगा। देखो शरीर में अगर ताकत है तो भाग के जा सकते हैं, शरीर में ताकत नहीं होगी तो इधर का उधर जाने में भी तकलीफ हो, फिर कठिनाई लगती है, पर कठिन किसने बनाया, मैंने बनाया, बाबा ने मुझे सहज, इसका नाम ही क्या है, सहज ज्ञान सहज राजयोग, ये सहज है, परंतु हमारे को जो द्वापर से लेके कठिन मार्ग अपनाने की आदत है ना, वो इधर हमारे को नड़ती है, वो आके खड़ी हुई, हम उसको कठिन मार्ग बना लेते क्योंकि अपने को अकेला समझ लेते हैं, परंतु अगर सदैव साथी को साथ रख करके चलते हैं कि हमारा साथी सर्वशक्तिवान है, बाबा कहते हैं ना हमेशा कंबाइंड रूप का अनुभव करते चलो, तो जब कंबाइंड रूप का अनुभव करते चलते हैं, बाबा को हमेशा साथ रख के चलते हैं, तो कोई भी कठिनाई नहीं लगती, सहज हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, सहज हम अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा सकते हैं, और बाबा के द्वारा जो प्राप्तियां हैं उनको हम अति सहज कर सकते हैं, ले सकते हैं बाबा से। बाबा देने के लिए तैयार है पर हम लेने वाले लेवे न। जैसा नहीं सागर भरा हुआ होता है पर घाघर भरने वाले में हिम्मत तो चाहिए ना। हम एक कदम बढ़ाते हैं बाबा हजार कदम सामने आता है, पर एक कदम तो उठाओ। वो भी हम समझते हैं बाबा करे तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं हो। तो इसीलिए खुद के साथ हमको प्रण करना चाहिए कि कुछ भी हो जावे हमारे स्पीड कभी कमती नहीं होवे चलने की, हमारा उमंग उत्साह कभी भी गायब नहीं होवे, सदैव बना रहे। क्योंकि जो कार्य हम उमंग से करते हैं उसमें मेहनत नहीं लगती है। और उमंग से कौन सा कार्य किया जाता है? जो अपने दिल से करते हैं। जबरदस्ती से कोई कार्य कराता है ना हल्का काम होगा, परंतु कोई जबरदस्ती से कार्य कराता है उसमें मेहनत लगेगी आपको, पर आप अपने दिल से करेंगे उसमें कभी मेहनत लगती है? वो तो खेल समझ के करते हैं, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा है। तो हम जो इस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, किसी को जबरदस्ती चलाया क्या? यहाँ कोई बोले हाँ नहीं हमारे को जबरदस्ती चल, उल्टा लोग तो खींच रहे पीछे, काय को चल रहे तुम, है ना ऐसा? वो खींच रहे आप उनको तोड़ करके आगे भाग रहे। तो हम अपनी खुशी से चल रहे हैं ना। बाबा कहता है तुम सब जो सजनिया है ना मेरी, तुम सभी का मेरे साथ लव मैरिज हुआ है। हुआ है नहीं हुआ है? भाइयों का क्या हाल है? हाँ जबरदस्ती कराया क्या किसी ने साजन से? आपको कनेक्शन नहीं। सब सजनियों का क्या है? खुद ही पसंद किया है हमने, हमने खुद ने उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। और जब हम खुद नहीं जोड़ा हुआ है उसके साथ हमारा अति प्यार है, उसके साथ हमारा गहरा संबंध है। बाबा के संबंधों की अनुभूति करो तो इससे क्या है हमारी उन्नति होती है। जितना जितना हम बाबा के संबंधों की अनुभूति करते हैं ना उतना उतना क्या होता है, जो भी देह के संबंध है वो भूलते जाते, आप ही भूलते जाते हैं। बुद्धि वहां से टूटती जाती है। एक तरफ जोड़ेंगे तभी दूसरी तरफ टूटेगी। आप तोड़ने के लिए मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं, आप सिर्फ जोड़ने का काम करो। बैठ करके ये भी भूले वो भी भूले वो, अरे काय को भूले काय, आप मरे मर गई दुनिया, खुद ही मर जाओ। मर्जी वे जन्म का नशा रखो फिर देखो क्या होता। जब हम ही मर गए हमारे लिए तो सब मर गए, पुराना जन्म ही खलास हो गया। परंतु अगर नहीं मरते हैं तो क्या हालत होती है आपको मालूम? कोई कोई ऐसा होता है ना पेशेंट, मरता भी नहीं है, कहते हैं ये मरता भी नहीं और मंजा भी नहीं छोड़ता है। जो ऐसा पड़ा रहता है ना बरसों तक कटिया पर, उसके लिए कहा जाता है मरता नहीं मंजा नहीं छोड़ता। इसका अर्थ ये होता है मरेगा तो भी क्या होगा, खटिया खाली हो जाएगी, दूसरा कोई यूज करेगा। ठीक होकर के चलेगा तो भी खटिया खाली हो जाएगी, मंजा तो छूट जाएगा। तो ठीक होके भी खटिया नहीं खाली करता है, मर के भी खटिया नहीं खाली करता है। तो यहाँ भी ऐसा, हम चलेंगे भी जरूर ज्ञान में चलेंगे, परंतु आधे उधर आधे इधर, तो उससे क्या हो जाता है दुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो जो ईश्वरीय जीवन का सुख है, इस जैसा सुख और कहाँ नहीं मिलना है। ईश्वरीय जीवन का जो सुख है, ईश्वरीय जीवन का जो आनंद है, वो कभी भी मिलने वाला नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और वो तभी मिल सकता है जब पूरा पूरा हम मर्जीवा बन करके चल। तो इसीलिए सदैव मर्जीवे जीवन का नशा रख के चलो, फिर देखो कितना आनंद है। आराम से चल, आपको चलना नहीं पड़ेगा, बाबा खुद ही लेके जाते, हमको नहीं चलना पड़ता, क्योंकि हमने उसके हवाले कर दिया ना। माया से बचना होवे, हम औरों को भी समझाते हैं माया से बचना होवे तो ईश्वर की गोद का बच्चा बन जाओ, तो फिक्र किसको होती है? गोद के बच्चे को कब फिक्र होती है, या जो उठाने वाला है उसको फिक्र होती है? तो बाबा हमको उठा के लेके जाए, पलकों पर बिठा के, गोदी में तो छोड़ो पलकों पर बिठा के लेके जाने को तैयार है, पर बैठो तो सही ना। उसके लिए हल्का बनना पड़े, पलक के ऊपर कोई भारी चीज नहीं रख सकते, एकदम हल्की चीज रख। तो इतना जब हम लाइट हो जाते हैं, डबल लाइट, एकदम शरीर से भी लाइट, आत्मा से भी लाइट, हाँ आत्मा तो है ही लाइट, पर शरीर भी, जब शरीर के भान से परे हो जाते हैं तो बाबा हमको आराम से लेके चला जाता, उड़ने की भी हमको जरूरत नहीं है, वो उड़ा के लेके जाता, सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। और अगर हम उसका नहीं सुनते तो आखिर आज बता, याद करा दिया, धर्मराज तो बैठा हुआ है, उसको भी तो काम चाहिए ना, धर्मराज को भी काम चाहिए, वो लास्ट में चलेगा फिर। इसलिए सदैव उमंग उत्साह से उठते रहो, अपने भाग्य के गीत गाते रहो, भगवान के गीत गाते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ओम शांति।
सभी उमंग उत्साह में आ गए, उमंगों के पंख हमेशा लगे रहे। दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां चार पांच बताई, मैं समझती हूँ आप सबने नोट की होंगी चार पांच युक्तियां जो दीदी ने बताई। और सबसे बड़ी बात की भाग्य और भाग्य विधाता याद रहे तो उमंग उत्साह कभी कम हो ही नहीं सकता है। तो अभी हम दीदी का बहुत बहुत एक हाथ की ताली बजा के धन्यवाद करते हैं।